नमस्कार आदाब दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त आ गया है क्योंकि आज मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में इतिहास की पढ़ाई का दिन आ गया है। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक क्या खास बता रहे हैं आज।
मैं रामबोध कुमार, प्लस टू विद्यालय नगर नौसा में इतिहास शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बच्चों, हमने पिछले दो अध्याय में महाभारत से संबंधित और महाभारत में घटित घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किए हैं। आज हम महाभारत से ही संबंधित महाभारत और पुरातत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाभारत एक ऐसा व्यापक महाकाव्य है जिसकी कथाओं एवं घटनाओं का चित्रण सदियों तक चित्रकला एवं मूर्तिकला में होता रहा है। ईसा की पांचवी शताब्दी से बनी एक निर्मूर्ति जो अहिच्छित्रा बरेली उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर बनी हुई है, में महाभारत के युद्ध के एक दृश्य का चित्रांकन किया गया है। इसे प्राचीनतम मूर्ति माना जाता है जिसमें महाभारत युद्ध का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार एक दूसरी मिट्टी की मूर्ति जो 17वीं शताब्दी की है और पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई है, में भी महाभारत का चित्रण किया गया है। इसमें सुसज्जित रथ पर सवार एक धनुधर को दिखाया गया है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भी चित्रों और मूर्ति कलाओं में दर्शाया गया है। इससे महाभारत के जनमानस में बसने का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरातत्ववेत्ता महाभारत की ऐतिहासिकता इसमें वर्णित राजधानी अन्य विवरणों की पड़ताल के लिए अत्यंत उत्सुक रहे, उसके लिए उन लोगों ने महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पहचान पर उनका उत्खनन किया। कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर की खोज का कार्य विख्यात पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने किया, लेकिन इस उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर के विवरण से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत के आदि पर्व में हस्तिनापुर को घनी बस्ती वाला एवं भव्य भवनों से सुसज्जित नगर बतलाया गया है। यह देवराज इंद्र की नगरी अलकापुरी के समान आकर्षक था। हस्तिनापुर नाम की समानता एवं गंगा यमुना दोआब में इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीबी लाल ने 1951 में इस स्थल का उत्खनन किया। इस उत्खनन से हस्तिनापुर की आबादी के 5 स्तर प्रकाश में आए। यह स्थल 1200 ईस्वी की ईसापुर के कुछ पहले से 300 ईस्वी तक आबाद रहा। तत्पश्चात अनेक वर्षों तक उजाड़ रहने के पश्चात इस स्थल से 1100 ईस्वी से आबादी के प्रमाण पुनः मिलने लगे। 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसापुर के स्तर से बनी मिट्टी की बड़ी दीवारों एवं कच्ची मिट्टी की साक्ष्य मिले। मिट्टी के कुछ टुकड़ों पर सरकंडा की छाप पाई गई, जिसे अनुमान लगाया गया कि कुछ मकान सरकंडों से भी बनाए जाते थे। मकान के दीवारों को मजबूत करने के लिए उन पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था। इस तरह जो है मकान से संबंधित निर्मित नल नालियों बलाई को प्रकाश में आया। इसीलिए आलोचक यह मानते हैं कि महाभारत में हस्तिनापुर नगर की जो व्यथा दिखलाई देती है वह कवि की कल्पना प्रतीत होती है, जैसा सभी नगरों के वर्णन में दिखलाई देता है। यह भी संभावना व्यक्त की गई कि नगरों का वर्णन महाकाव्य में उस समय जोड़ा गया जब 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य गंगा यमुना दोआब में बड़े स्तर पर नगरों का विकास हुआ और उसकी समृद्धि बढ़ी। महाभारत का महत्व, महाभारत के मूल स्वरूप का विस्तार सेमानेश्वर होता रहा। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी इसे लिखा गया। इसके अंतिम संकलन तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं को इसमें समावेश किया गया तथा इसमें दी गई कथाओं की पुनर्व्यवस्था की गई। महाभारत के महत्वपूर्ण अंशों को चित्रों, नृत्यों, नाटकों, नृत्य जीवंत रखा। आज भी यह प्रक्रिया जारी है। विख्यात बंगला लेखिका माँ स्वता देवी ने महाभारत की एक कथा को आधार बनाकर कुंती ओ निषादी नामक लघु कथा की रचना की। इसमें उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ लक्षागृह लहा निर्मित गृह में रह रहे थे, तभी दुर्योधन ने घर में आकर आग लगाकर पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई थी। पांडवों को दुर्योधन की योजना की भनक लग गई, अतः वे मकान में एक सुरंग खोद कर सुरक्षित निकल भागने की व्यवस्था कर लिए। इस अवसर पर कुंती ने एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में ब्राह्मणों के अतिरिक्त एक निषादी, एक जनजाति महिला भी अपने 5 पुत्रों के साथ आमंत्रित थी। कुंती ने अपनी योजना अनुसार उन्हें अत्यधिक मदिरा पिलवा दिया। रात्रि में जब सभी निंद्रावस्था में थे तो पांडवों ने उसे लक्षागृह में स्वयं आग लगा दिया और सुरंग द्वारा भाग गए। निषादी और उसके पुत्र गाढ़े नशे में थे, इसलिए भाग न सके और जल मरे। लोगों ने समझा कि कुंती ने अपने पांचों पुत्रों को साथ जल गए। लेखिका की इस कथा का महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर कुंती वन में रहने लगती है। वह वन में निषादों को देखती है और उसे पुरानी घटना याद आती है। वह प्रकृति की प्रतीत पृथ्वी से बातें करते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार करती है। एक निषादी उसे लगातार देखती रहती थी। एक दिन वह कुंती के पास गई, आई और पूछा कि उन्हें क्या लच्छागृह की घटना की याद है। निषादी ने इस प्रश्न से कुंती अचंभित हो गई। कुंती को लगा शायद यह वह निषादी है जो अपने पुत्रों के साथ भोज में सम्मिलित हुई थी और किसी प्रकार बच गई थी। कुंती पूछा तो प्रत्युत्तर में निषाद ने बताया कि जो निषादी जली मरी थी वह उसकी सास थी। उसने कुंती को इस बात के लिए धिक्कार की, 6 निर्दोष लोगों की जान लेकर आपने अपने आप को अपने पुत्रों को बचाया। कुंती के पास आत्मग्लानि का अतिरिक्त अन्य कोई जवाब नहीं था। जिस समय कुंती और निषादें बातें कर रही थी, अचानक मन में लगी आग की लपटें उनकी ओर लपटी। निषादी तो लपटों से बचकर निकल गए, परंतु कुंती लपटों में भस्म हो गई। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह दिखलाया कि निर्दोष पर अत्याचार करने का परिणाम अंततः अत्याचारी को भी भुगतना पड़ता है।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।